نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نماز جس کو عربی زبان میں صلات کہتے ہیں اور صلات کا لفظ صلی یسلی تسلیتن سے بھی ہے سوات لام لام بھی ہے اور سوات لام واو بھی ہے ایک کے مطلب میں عاجزی ہے اور ایک کے مطلب میں جلانا ہے تو نماز کو صلات کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ نماز ساری کی ساری دعا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز گناہوں کو جلاتی ہے دن میں 5 بار نماز ادا کرنا جس کو فرض نماز کہتے ہیں عورت اور مرد کی تخصیص کے بغیر سب پہ فرض ہے اور اس سے خیر و برکات بھی بہت ملتی ہیں اور نماز آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے سنن نسائی کی روایت ہے کتاب الصلاۃ اور اس کے ریفرنس سب لکھے ہوئے ہیں آپ بعد میں دیکھ کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا اگر نماز شرائط ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوگی تو وہ شخص نجات بھی پائے گا اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کرے گا ذرا سا اپنا وہ وقت یاد کیجئے جب آپ سکول میں پڑھتے پڑھاتے تھے پہلا سوال اچھا تو باقی بھی اچھا کیا کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو پہلی بات اس حدیث کے ساتھ نوٹ کیجئے گا کہ نماز زندگی کے اندر بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے پہلا معاملہ جو حقوق اللہ میں ہوگا وہ نماز کا ہوگا اور نماز ہی تو آخرت کی کامیابی ہے نماز اصل میں ہمیں مہذب بناتی ہے کیونکہ آپ نماز میں کوئی غیر مہذب حرکت کر نہیں سکتے بس آپ منہ بھر کے کھل کھلا کے ہنس نہیں سکتے آپ اوپر نہیں دیکھ سکتے آپ کچھ کھا نہیں سکتے اور نماز اصل میں آپ کو ایک منظم انسان بناتی ہے ڈسپلن شخص ہوتا ہے نمازی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس مل جانا مسلمانوں کا روزانہ 5 دفعہ جمع ہونا اور پورے محلے اور علاقے کے مسلمان مردوں کا جمع ہونا کیا خوبصورت ہارمنی ہے کیا کوئی کلب ہوگا جہاں دن میں کوئی 5 بار ملے آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ بنے ہوتے ہیں کوئی گروپس ہیں چلے جی ہفتے میں ایک دن ملیں گے جمعے کو ملیں فلاں لیکن جہاں 5 دفعہ ملیں کیا وہاں واقعی اجتماعیت نہیں ہوگی آپ اپنی دوستوں کو دن میں 5 بار ملیں کتنے لوگ تیار ہیں ہم کہتے ہیں صبح مل لیا تھا اب نہیں ملنا تو مرد بیچارے بھی کہتے ہیں ہم ایک جماعت پڑھتے ہیں نہیں 5 دفعہ جانے سے معاشرہ واقعی ایک دوسرے سے جڑتا بھی ہے پھر اس میں نظم سیکھتا ہے بندہ ایک امام کی امامت میں آپ کو جب کھڑا کر دیا جاتا ہے نماز آپ کو امیر کی اطاعت سکھاتی ہے نماز آپ کو پابندی اوقات سکھاتی ہے طہارت اور نظافت کا وہ روح پرور نظارہ جو نماز میں نظر آتا ہے دنیا میں کسی مذہب میں نہیں دکھتا تصور میں لائیے ذرا حرم کے ارد گرد کی پڑی ہوئی نماز ایک شخص کے اسلام پہ آنے کی وجہ بنی آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا ہو یہ واقعہ کہ جس نے شیئر کیا کہ میں غیر مسلم تھا میرا ایک مسلم دوست تھا اور اس طرح ہم بات چیت کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ بالفرض کسی جگہ 10 لاکھ لوگ ہوں تو ان سب کی لائنیں سیدھی بنانی ہوں تو کتنا وقت لگے گا تو اس شخص نے کہا کہ اول تو یہ ناممکن ہے اور اگر ممکن بھی ہے تو اس میں تو 5-6 گھنٹے لگ جائیں گے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو لوگ ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں جانتے یعنی ایک دوسرے کا کوئی ہارمنی نہیں کوئی ربط نہیں تو اس نے کہا پھر تو 10 گھنٹے لگ جائیں گے ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے اذان کی آواز سنی حرم کی اور وہ بکھرے ہوئے لوگ جو بازاروں میں جا رہے آ رہے ادھر اقامت ہوئی اور وہ صفے باندھ کے گول دائرے کرتے کرتے حرم کے اندر خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوئے یہ منظر اس کے دل کو بھا گیا اور اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا کہ وہ دین کیسا خوبصورت دین ہوگا کہ جس میں صرف ایک آواز نے بکھرے ہوئے مجمع کو اتنے ڈسپلن لوگوں میں بدل دیا اللہ کرے کہ آج بھی ہم مسلمان ایسے بن جائیں تو پھر یقیناً غیر ہماری ان خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر اسلام کو مان جائیں پھر اب دیکھیں نماز آپ کو مجھے پابندی اوقات سکھاتی ہے طہارت کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز ہوتی نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مومن اور کافر کے بیچ کی حد امتیاز ہے ڈفرنس مسلم نماز پڑھتا ہے اور غیر مسلم نہیں پڑھتا، اور جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، پھر نماز فواہش اور منکر سے روکتی ہے. جو نمازی ہوگا اللہ اس کو ضرور عزت اور سرخ روی عطا کرے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے خوشخبری دی کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز بڑی اہم تھی. عین نزا کے عالم میں جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی لسان مبارک پر کیا وصیت تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز نماز اور جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سارے کو پڑھتے ہوئے جب ہم اس موضوع پہ بات کرتے جائیں گے تو قیامت کے دن ہمارا جو پہلا حساب ہوگا وہ انشاءاللہ نماز کا ہوگا. پہلا ٹھیک ہو گیا تو باقی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں، اس کی روحانیت بھی ہے. جیسے آپ کے میرے جسم میں روح بھی ہے اور ہمارے باڈی آرگنس بھی ہیں. تو جس طرح ظاہری ڈھانچہ نماز کا بہت خوبصورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہو، اسی طرح باطنی طور پہ دل جھکا ہو، خشوع اور خضوع ہو. شرائط نماز کی پوری کرنا کیا ہے؟ کہ اس کو وقت پہ پڑھنا، اس کے ارکان کا خیال رکھنا، اور مطلب نمازیں توڑ موڑ کے نہیں پڑھنی، بلکہ نمازوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہے کہ کوئی دوسرا بھی آپ کو نماز پڑھتا دیکھے تو اس کا بھی دل چاہے کہ میں اتنی پیاری نماز پڑھوں. اکیلے میں طویل پڑھیے، تنہائی میں لمبی پڑھیے، دوسروں میں تو مختصر پڑھیے، جماعت کروانے والا مختصر جماعت کروائے، اور رات کی تنہائیوں میں جتنی مرضی کیجیے. اور یقین کیجئے کہ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جب نماز میں آپ قیام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام یاد آ جائے گا. اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے ہیں تو اللہ سے کہہ دیتے ہیں آپ کہ اللہ ساری دنیا پیچھے، اب تو ہے. جیسے کال مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چپ کریں، آئی ایم آن کال، اب کنیکٹ ہو گیا میرا فون، میرا لیپ ٹاپ، اب مجھے کلاس سے بات کرنی ہے. تو نماز میں دن میں 5 بار آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. اور جب دن میں 5 دفعہ کم سے کم بھی آپ نے یہ کام کیا ہوگا تو کیا ممکن نہیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس وقت بھی انسان اسی کیفیت میں ہو. ایک جملہ بول دیتی ہوں، اکثر ہی بولتی ہوں، آج پھر آپ کے لیے. 24 گھنٹے ہم حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، ایسے ہی ہے نا، لیکن کیفیت نماز میں رہ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ خشوع. نماز آپ کو مجھے خشوع سکھاتی ہے، ہمارے اندر سے تکبر نکالتی ہے، ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور اللہ کی نظروں میں بڑا بناتی ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو جو نماز کا طریقہ بتا دیا، جو نماز سے سارے ہمارے معاملے درست ہو گئے، تو وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. مثلاً ایک دعا جو آپ سورت ابراہیم کی آیات میں پڑھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر ہی لوگ نماز میں آیت 40 اور 41 کی دعا پڑھتے ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب، مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. ربنا فاغفر لی، یعنی اگر شروع سے دوبارہ پڑھیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر دے کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار، میری دعا قبول فرما. اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت کیجئے. ایسے نہیں لگتا، ایک تڑپ ہے. آپ اپنی اور اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کی نمازوں کی فکر میں لگتے ہیں، اور نماز کے ساتھ ہی حساب کتاب ہے. وجہ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا ایک بار صحیح کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو یاد تو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق تو جڑ جاتا ہے. تو لہٰذا اپنی دعاؤں کو زندہ کرتے ہوئے پڑھیں. اور ایک بڑی ہی پیاری دعا جو نماز پڑھتے ہی سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی بھی مانگا کرتے تھے، کہ دعا کیا ہے؟ اللہم آئینی علی ذکریکا و شکریکا و حسنی عبادتک. इसका तर्जमा क्या है? ऐ मेरे अल्लाह, जिक्र करने और शुक्र करने और अच्छी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। आप देखिए, ऐसे नहीं लगता कि बंदा बिच बिच जाता है कि मेरे मालिक तू मुझे इस चीज़ की तौफीक दे कि मैं तेरी बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकूं, तेरे साथ अपना मामला दुरुस्त रखूं। एक दफ़ा फिर दोहराएंगे ताकि आपको याद भी हो जाए और आप जब मांगें और बोलें तो आपको समझ भी आ रहा हो। जी, दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। मेरे बगैर पढ़िए जरा सब मिलकर ऊंची आवाज से। क्या कुछ मांग लिया आपने। अक्सर नमाज के बाद जब ये दुआ मांगती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि बंदा बड़े से बड़ा भी काम करके कि अल्लाह करना कोई नहीं आया सिखा दे। ये दुआ कुछ इसी किस्म की फीलिंग देती है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा नमाज की अहमियत को। नमाज क्यों अहम है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और नमाज की अहमियत जब मालूम हो जाएगी तो फिर क्या होगा। ये नमाज हमारे लिए हर चीज़ से प्यारी होगी। तो नमाज की अहमियत और इम्पोर्टेंस ऑफ दी सलाह, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कह दे कि इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि शायद ये बस एक रिचुअल है, हमने अब अदा करना है और ना पढ़ेंगे तो ये होगा। लेकिन आप देखते हैं कि ज़िंदगी में नमाज आपके मेरे लिए कितना फ़ायदा मंद होती है। और आपको दुनिया में कोई भी चीज़ जितनी अहम लगती है ना, आप फिर अपनी एफर्ट्स उसके लिए उतनी ही ज़्यादा लगाने लगते हैं और आप अपने आप को उसके मुताबिक करते हैं। तो नमाज की अहमियत में से पहली चीज़ क्या है? पहली बात है कि ये नमाज पढ़ना हर मुसलमान औरत और मर्द पर लाजिम है। बहुत ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस की बातें होती हैं, औरत मर्द की इक्वलिटी की बातें होती हैं, तो याद रखिए कि औरत है कि मर्द, एक ही एज में दोनों को फ़र्ज़ होती है और वो इंशाल्लाह हम अपनी जगह पे सीखेंगे। मर्द और औरत दोनों पर नमाज फ़र्ज़ है। और फिर दूसरी इसकी अहमियत क्या है कि ये फ़र्ज़ खैर व बरकत के बहुत सारे इम्कानात और अजीमतों का खजीना है। यानी नमाज इज नॉट ओनली नमाज। हम कहते हैं ना, नमाज बराए नमाज, रोज़ा बराए रोज़ा, नहीं। नमाज बराए सवाब, नहीं। नमाज बरकतें लेकर आती है। नमाजी की ज़िंदगी और बेनमाजी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क है। वक्त में बरकत नहीं रहती, बेनमाजी के चेहरे पे बरकत नहीं होती। और एक नमाजी को नमाज इतनी खैर और बरकत अता करती है कि वो इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। फिर इसी तरह आप देखिए कि नमाज आखरत की कामयाबी की ज़ामिन ही नहीं, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी में महज़ब ज़िंदगी का एक अजीम व शान सलीका सिखाती है, जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी और निज़ाम में नहीं मिलती। आज हम बहुत ही इम्प्रेस होते हैं मोस्टली नॉन मुस्लिम्स कल्चर के, से लाइनें बनाते, सफ़ों में रहते, एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते। तो नमाज क्या सिखाती है? आप इंशाल्लाह देखेंगे सफ़ों को फलांगने की इजाज़त ही नहीं, दो के बीच में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या पता चला कि नमाज इंसान को डिसिप्लिन और महज़ब बनाती है। फिर इसी तरह नमाज से कुछ एजाजात मिलते हैं, वो नोट कीजिएगा। नमाज के चार बड़े एजाज, एजाज समझते हैं, ऑनर। आप कहते हैं ना कि आपने आकर हमें एजाज बख्शा, आपने हमें बहुत ही इज्जत बख्शी। तो सबसे बड़ा एजाज ऑनर क्या है? कि अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का मौका मिला। कि हम सारा दिन लोगों की खिदमतें करते नहीं गुजार देते, फलां मेरे किस काम से खुश, फलां क्या कहता है, फलां क्या कहता है। आप दुनिया के 10 कामों में उलझे हुए थे, लीव इट, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। एक लफ्ज़ लिखिएगा, मैं किस मुंह से खड़ी हूँ, मैं कौन सा मुंह दिखाऊं। अमूमन ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो नमाज में अल्लाह आपको सबसे काट कर अपने सामने खड़ा करता है। देखिए ना, आप इस मुल्क में रहते हैं, इस वक्त मैं लंदन में हूँ, और यूके की क्वीन, नाम पता नहीं क्या है, कोई बता दे, क्वीन एलिजबेथ, क्या कभी उसने भी आपको बुलाया, बकिंगम पैलेस कभी उसने बुलाया? आए जरा बैठिए, मेरे सामने बैठे, मुतकाबिलिंग खड़े तो हों। किसी को नमाज में अगर सहाबा करम नहीं देखते थे तो दो में से एक चीज का गुमान होता था कि या तो बीमार है या शहर में नहीं है। और जो मुस्तकिली नहीं आते थे उनके ऊपर निफाक का शुबा होने लगता था, और सहाबा में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मस्जिद में ना जाता। फिर इसी तरह एक एजाज के कि नज्म सीखता है, तंजीम, डिसिप्लिन। आज हम दीन के अंदर भी तरतीब को मलहूस क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि असल में हमारी तरबियत नहीं हुई इस तरह से। फिर इस तरह आप देखिए कि एक अमीर की इताअत समझ आती है। आप जानते हैं कि चाहे हजारों लोग पीछे हों, इमाम एक ही है, दो नहीं होते ना। हरम को जहन में लाइए, मगरिब इशा की नमाज, रमजान की तरावियां, कई लाख लोग पीछे होते हैं, दो इमाम रख लें, एक ही इमाम है। ये है फितरत का असूल, ये है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, जहां एक के हाथ में इख्तियार रहता है तो बाकी सारे फिर उसके अंडर बड़ी खुशी से रहते हैं। फिर सर पाबंदी औकात है, टाइम मैनेजमेंट है। अल्लाह करे दोबारा वो दौर आ जाए कि मुसलमान के शादी के कार्ड पे जाना है तो बाद जोहर, फिर खाना है तो बाद असर, और इस तरह से पहले होता था। अब तो ऐन मगरिब की नमाज से पहले खाना खुल जाता है। तो टाइमिंग्स नमाजों के साथ होने चाहिए। फिर इस तरह देखिए कि तहारत और सफाई का वो रूह परवर नज़ारा हमें नमाज में दिखाई देता है, जो इस दुनिया में, इस जमीन पर किसी और मजहब में नजर नहीं आता। एक सवाल है कि नमाज की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है, और वो क्या है कि ये मोमिन और काफिर के दरमियान खते इम्तियाज है। क्योंकि मोमिन मुसलमान नमाज पढ़ता है, गैर मुस्लिम बैठा रहेगा, वो क्यों उठे? तो फर्क पड़ता है नमाज से। और आपने फरमाया कि जिसने नमाज तर्क की इसने कुफर किया। फिर एक और नमाज की खसूसियत जिसको आप कहते हैं इफेक्ट ऑफ सलात क्या है, कि नमाज फवाहिश और मुनकरात से रोकती है। इन्न सलात तन्हा अनिल फख्शाई वल मुनकर वल जिक्रुल्लाह अकबर। नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नमाजी होगा ना, उसका दिल मुनकर में नहीं लगेगा। तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि एक जवान लड़का किसी लड़की के पीछे लग गया, और वो नेक शरीफ औरत थी, कहने लगी कि तुम 8 दिन तक हजरत उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ो, जो उस वक्त खलीफा थे, फिर जो तुम कहोगे मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, 8 दिन में आता हूँ वापस। और हुआ क्या कि अगले दिन ही क्या हुआ कि अगर रोज 4 चक्कर लगाता था तो उस दिन 3 लगाए, दूसरे दिन हो सकता है 2 लगाए, और उसके बाद तो गायब ही हो गया। कुछ सालों के बाद वही लड़का कहीं उसको मिला तो उसका तो हाल बदला हुआ, हुलिया बदला हुआ। कहने लगी तुम वही हो जो मेरी गली में आते थे। कहने का काम की बात करो, औरत मर्द का इस तरह बेहिजाब बात करना पसंदीदा नहीं। कहने लगी तुझे क्या हुआ है? कहने लगा उमर फारूक के पीछे जो मैंने 8 दिन नमाजें पढ़ी, उसने मेरा दिल बदल दिया। ये है नमाज का असर। ये तो आज हम जरूरत रखते हैं ना कि सारे काम भी साथ साथ चल रहे हैं, शादियां, महफिलें, मेहंदी, उपटन, खाने पीने, सब कुछ, और साथ नमाजें भी पढ़ते हैं। शुक्र है पढ़ तो रहे हैं ना। मैं ये नहीं कहती कि अगर ये सब कर रहे हैं तो अब नमाज ना पढ़े। इंशाल्लाह देखिएगा एक दिन नमाज ये सारी चीजें छुड़वा देगी। फिर एक और खसूसियत नमाज की क्या है, कि इज्जत और सुर्ख रुई की जमानत है। यानी ऐसे लोगों को दुनिया में भी इज्जत मिलेगी। और सुर्ख रू होना क्या होता है भला? आप उर्दू में कहते हैं ना, शुक्र अल्लाह ने मुझे सुर्ख रू किया, यानी आपने किसी काम की जिम्मेदारी ली और अल्लाह ने वो आपसे पूरी तरह करवा दिया। तो क्यामत के दिन ऐसे लोगों के चेहरे इब्यद्दत वुजूहुहुम की सूरत में होंगे, यानी वो बहुत कूल एंड काम होंगे। फिर इसी तरह रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। आपको अपनी बेटियों से बहुत ही प्यार था, हालांकि हजरत फातिमा से तो बहुत ही मोहब्बत थी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि फातिमा तू मेरी आंखों की ठंडक, नहीं, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हम एक और बात देखते हैं कि कुरान पाक की नजर में कामयाब लोग कौन है। पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी मेरी नजर में या आज हमारे माशरों में कामयाब कौन है, जो पढ़ ले, जिनकी जॉब्स लग जाए, जिनकी बड़े खूबसूरत अच्छे बड़े घरों में शादियां हो जाएं, और करोड़पति बाप की अकलौती बेटी है, या अगर लाखपति लड़के से निकाह हुआ और उसके बाद शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ और बस ही कामयाब है, चाहे एक नमाज ना पढ़े पूरे दिन में। इस्लाम क्या कहता है? कद अफलहल मोमिनून, बशारत दी उन अहले ईमान को जो नमाजों में अल्लाह के हाँ गिड़गड़ाते हैं कि अल्लाह उनको फलाह देगा। और इसी तरह याद रखे कि अल्लाह के नबी को नमाज की अहमियत और अजमत का इस कदर एहसास था, कैंद उस वक्त जब के ऊपर आपके ऊपर निजात का आलमतारी था और आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, लेकिन आपकी ज़ुबान मुबारक पर वसीयत थी, अस्सलात अब अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज, और अपने जेरे दस्तों का ख्याल करो, यानी औरतों का ख्याल करो, अपने लौंडी गुलामों का करो। और सहाबा की चश्मदीद रिवायत है कि हम देख रहे थे कि अल्लाह के नबी दो लोगों के सहारे जाए नमाज की तरफ आ रहे थे और आपकी टांगे नीचे से काम नहीं कर रही थी, इस पे बहुत कुछ बोला गया। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी की टांगे बेजान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपका ध्यान नमाज की तरफ था। सवाल पैदा होता है, लिखिए कि असली नमाज कौन सी है। असल नमाज वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और सहाबे कराम को सिखलाई। आपको नमाज सिखाने का इस कदर शौक था और आप इतने अहतमाम करते थे कि एक मौके पर आपने मिंबर पर खड़े होकर नमाज पढ़कर दिखाई ताकि सहाबे कराम नमाज अदा होते हुए देखें, हर जुज को अच्छी तरह समझें और हमेशा के लिए अपने अमल में महफूज कर लें। तो क्या पता चला कि जो चीज़ अहम होती है आप उसको बार बार करके दिखाते हैं। मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आ गई, जहाज़ में बैठे हैं तो चाहे आप 20वीं दफ़ा बैठे हैं या 200 बार, वो आपको हमेशा एक सेफ्टी प्रिकॉशंस की वीडियो दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? अल्लाह ना करे 10 साल हो गए आपको सफ़र करते, 20 हो गए, अभी तक तो जहाज़ नहीं गिरा ना, और अल्लाह ना करे आगे भी ऐसा कोई हादसा हो किसी के साथ। लेकिन वो दिखाते क्यों हैं? इसलिए दिखाते हैं कि आप सेफ्टी मेजर्स ले लें। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं तो अहम होती है, तो फिर ही है ना कि अल्लाह ना करे अगर आज ही जहाज़ को कुछ हुआ तो आपने सेफ्टी मेजर्स तो लिए हों। तो इतना पढ़ने के बाद हमें इसका तो यकीन हो गया है कि नमाज कोई मामूली चीज़ नहीं है। दुआएं भी साथ साथ ही मांगते रहते हैं कि अल्लाह वे नमाजियों को नमाजी बना दे और जो नमाजें पढ़ते हैं उनकी नमाजों में रूह डाल दे। देखिए आज नमाजें पढ़ते हैं फिर भी नमाजें बुराइयों से क्यों नहीं रोक रही? इसलिए कि मुर्दे तो नहीं रोकते। इस पे एक लेक्चर है, हमारी नमाजें बेरुख क्यों हो गईं, और मेरे अहले वेबसाइट पे नमाज के टॉपिक के अंदर पहला ही दूसरा कोई टॉपिक है, आज हमारी नमाजें बेरुख क्यों हो गईं या आज हमारी नमाजें बेअसर क्यों हो गईं। इसलिए कि मुर्दा है, मुर्दे तो नहीं रोकते ना। जिंदा माँ बाप ही अपने बच्चों को रोकते टोकते हैं ना, अब जो दुनिया से चले गए वो क्या टोकें। तो दैट मीन ये कि हमें अपनी नमाजों को स्ट्रॉन्ग करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे आपके लिए बहुत अहम है कि नमाज तो सीखने लगे हैं, नमाज की ABC तो पढ़ेंगे, लेकिन ये नमाज जो हम डिस्कस करेंगे और जिसको पढ़ेंगे हमारे तक ये कैसे पहुंची? तो इस पे आप कुरान पाक की आयत सूरत नहल 44 नोट कीजिएगा। वंजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और हमने आपकी तरफ ये जिक्र यानी कुरान पाक उतारा है ताकि जो कुछ लोगों के लिए नाजिल किया गया है आप इसकी वजाहत भी करें और इसकी तशरीह भी बयान करें। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी को बराह रास्त इस आयत में हुक्म दिया गया है कि कुरान के अहकामात को वजाहत से पेश करें। तो यहाँ अब आपके लिए एक और खूबसूरत नुक्ता है, पूरे कुरान पाक में एक भी जगह नमाज का तरीका कहीं नहीं है। एग्जैक्टली टाइम देकर नमाजों के औकात, उनके नाम कुछ भी नहीं है। वो कहाँ है? हाईलाइट कर लीजिए इस आयत को, इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ये है हदीस की अहमियत। हुज्जियत हदीस क्या है कि हम नमाजें भी जो अदा करेंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे करेंगे। आज जो लोग हदीस का इनकार करते हैं या उसको इतना अहम नहीं समझते, सेहत का ख्याल नहीं रखते, ज़यीफ़ रिवायतें भी पेश करते रहते हैं ऐसी चीज़ों में, उनके लिए ये आयत एक क्वेश्चन मार्क है। तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि जो कुछ भी यहाँ सीखने वाले हैं ये हदीस की रोशनी में सीखेंगे। सवाल पैदा होता है कि मा नुज़िला इलैहिम में क्या कुछ आता है? क्वेश्चन खुद बनाकर लिखिए तो फिर उसका जवाब आपको अगले बात में मिल जाएगा। और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म की तामील में कमर बस्ता हो गए। जो हुक्म आपको मिलता सबसे पहले आप खुद उस पर अमल करते। जो शरीयत आप पर नाजिल हुई आपने इसको पूरी वजाहत के साथ लोगों के सामने भी पेश किया, और नमाज की अहमियत के पेश नज़र इसे नस्बतन ज्यादा वाज शक्ल में पेश किया, अपने कौल और अमल से इसका प्रचार किया। यानी आपके ऊपर जो भी बात नमाज से मुतल्लिक होती आप उसको बहुत ही ज्यादा अहमियत देते, और ये आपकी सुन्नत थी। आप चाहते थे कि लोग मेरे से ये अहकामात सीख लें और बाद में फिर इसी पे अमल हो। और एक रिवायत आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। आप मिंबर पर तशरीफ लाए, नमाज की इमामत फरमाई, क़याम किया और रुकू मिंबर पर किया, यानी ऐसे ही जैसे मैं इस वक्त ये बात कहते हुए ज़रा सा आपसे ऊपर खड़ी हो जाऊं ताकि आप मुझे सब देख लें। तो आप थोड़े से ऊंची जगह पे खड़े थे, फिर आपने ये सब कुछ करके दिखाया, फिर नीचे उतर कर सजदा भी करके दिखाया। आज की जबान में इसको आप क्या कहते हैं भला? विजुअल, ऑडियो विजुअल, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के नाम सुने होंगे, यानी आपने नमाज का तरीका ऐसे नहीं बोल के कहा दो रकत पढ़ लो सजदा करो, करके दिखाया, फिर दोबारा मिंबर पर चढ़ गए और नमाज से फारिग होकर फरमाया इन नमासना तुहाजा, मैंने ये काम इसलिए किया, यानी तुम्हें प्रैक्टिकली ये सब कुछ कर करा के क्यों दिया, क्योंकि लिता तम मुंह भी, ता तम मुंह भी क्या इमामत, नोट कीजिएगा, कहते हैं इरादे को कसद करना, ताकि तुम भी ऐसा ही करो, वली तअल्लमू सलाती और मेरी नमाज सीख लो, यानी जैसे मैंने नमाज पढ़ी मेरी नमाज की कैफियत मालूम कर लो। तो क्या इस हदीस से पता चला, नमाज एक ऐसा अमल है जो आपने करके दिखाया बोलकर बताने के साथ साथ। और इससे भी बड़ी हदीस जो आप सभी बहुत दफा बोलते और सुनते भी हैं, सल्लु कमा रई तुमोनी उसल्ली, सही बुखारी की यह रिवायत है 631 कि तुम इस तरह से नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। यहां से आपको पता चल रहा है ना कि अहमियत है नमाज की, बाकी चीजों में इतना इख्तमाम नहीं हुआ जितना के नमाजों के साथ हुआ। फिर इसी तरह एक और हदीस नोट कीजिएगा, खम्सु सलावातिन, पांच नमाजें अल्लाह ने फर्ज की, इफ्तरदहुन्न अल्लाहु अज़्ज़ वजल्ला मन अहसना वुदूअहुन्ना वसल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना व अतम रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना कान लहू अलल्लाहि अहदुन अन यग़फिर लहू व मन लम यफ़ल फलैसा अलल्लाहि अहदुन इंशा अगफर लहू व इंशा अज़्ज़बहू। कितनों को सिर्फ अरबिक से बात समझ आ गई, कुछ तो आ गई होगी ना। आइए तर्जमा सुनिए, अल्लाह ताला ने पांच नमाजें फर्ज की हैं, जो शख्स इनके लिए अच्छी तरह वुजू करे, इन्हें वक्त पर अदा करे और इनमें मुकम्मल सही रुकू करे और खुशू का अहतमाम करे, तो इसका यानी इस इंसान का अल्लाह ताला पर जिम्मा है कि इसे माफ कर दे, और जो इन बातों का लिहाज ना रखेगा इसका अल्लाह पर कोई जिम्मा नहीं, चाहे तो इसे माफ करे और चाहे तो अजाब दे। कितनी बड़ी बात है, यानी जो अच्छे वुजू के साथ खुशू और खुदू के साथ अच्छी सी नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह कहता है इट्स अप टू मी, जैसे आप कहते हैं ना, कोई कहता है बस अब तुम मेरे जिम्मे में हो, वो अल्लाह की हिफाजत में भी आ जाता है और अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमतें भी कर देते हैं। और खास तौर पे आप देखिए कि अल्लाह के नबी जिन पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम है, फिर अहले बैत और इसी तरह सहाबे कराम पर भी अल्लाह ताला अपनी रहमतें करें, ये सब नेक और परहेजगार लोग थे। इन्होंने अल्लाह के नबी की इबादत, आपकी नमाज, आपके अकवाल, आपके अफाल को नकल किया, फिर उम्मत तक पहुंचाया, और सिर्फ आपके कौल फेल और आपकी खामोशियों को दीन करार दिया अल्लाह ने। अल्लाह के नबी ने जो कहा वो कौली है, जो करके दिखाया उसको फेली हदीस कहते हैं, और कोई काम आपके सामने हुआ और आप खामोश रहे, इसको तकरीरी हदीस कहते हैं, करार पा ले, यानी आप खामोश नहीं रहते थे गलत काम को करता देखकर, चूंकि आप खामोश रहे इसका अंदर काम ठीक था, फिर ऐसे काम काबिले इताअत हैं। और उसके बाद वो नेक लोग, बुजुर्ग लोग जो हमारे असलाफ गुजरे, वो अलिया कराम गुजरे, जिन्होंने इस नमाज के तरीके को उसी तरह आगे से आगे पहुंचाया और आपके नक्शे कदम पर चलते चले गए। तो अल्लाह ताला हमें भी इन नमाजों की बेहतरीन हिफाजत की तौफीक दे। आज वक्त के साथ साथ जब मसरूफियात बढ़ती गईं, हमने अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल लिए, कभी पढ़ने के, कभी बच्चों के खाने पकाने के, कभी सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस होने के, तो हमारी नमाजों के औकात दिन ब दिन मुख्तसर से मुख्तसर होते गए। इज़ इट ट्रू? घर में मेहमान आए तो चोट किस पे पड़ती है, बाजार जाएं तो क्या छूटता है, शादियों में क्या छूटता है, और इसी तरह सब कुछ। और ये जो रिवायत थी अबू दाऊद की रिवायत थी 425, तो हमें क्या पता चल गया कि नमाज का मर्तबा बहुत है। एक जुमला लिख लें बस, आप इसको अपने पल्लू से बांध लीजिए, जितनी अहमियत आपकी जिंदगी में नमाज की होगी उतने ही अहम आप अल्लाह की निगाहों में होंगे। आप अपनी जिंदगी में नमाज को अहमियत दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में नमाज का बहुत आला मर्तबा होगा, उसकी अदायगी में आप कोताही नहीं करेंगे, आपको अजर व सवाब ज्यादा मिलेगा। फिर अजर व सवाब में कमी बेशी का मेयार भी ये है कि जिस कदर जिसकी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के करीब होगी ना, उसी कदर फिर उसका अजर और सवाब भी ज्यादा होगा। और जिसकी नमाज आपसे मुख्तलिफ है, उसका अजर कम होगा। मैं एक मिसाल देती हूँ, कभी कोई दौर था लोग कपड़े मैच करते थे, दुपट्टे मैच करते थे, शलवारें मैच करते थे, कैसे जाके सनलाइट में मैच करते थे ना, कभी कभी डे लाइट में और शेड आ जाता था, रात को कुछ और था। हमारी नमाजें क़यामत के दिन इस तरह मैच होंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से। बड़ी अहम बात है, बिल्कुल मैच करना है, शेड बाय शेड, कलर बाय कलर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तो वाकई खौफ ज़दा कर देती है। मेरा तो हमेशा इस हदीस को बयान करते वक्त दिल अंदर से बंद हो रहा होता है। रिवायत है अबू दाऊद में, 796 है और 789 भी है। इसको सुनते वक्त आपने एक तो नियत करनी है कि मैं इसको बाद में खुद पढ़ूंगी भी, और खुद इस पे कम अज़ कम 5 मिनट गौर करेंगे। आपने फरमाया, इन अलबदा लयन शरीफू वमा कुतिबलहू इल्ला उश्रु सलातिही तुस उहा सुमुनुहा सुबु उहा सुदु सुहा खुमु सुहा रुबु उहा सुलु सहुमा सुलु सुहा निस्फुहा। अब सुनिए ज़रा तर्जमा, और वाकई खून खुश्क होने लगता है। आपने फरमाया कि बेशक बंदा नमाज अदा करता है, लेकिन इसके नामे अमाल में इस नमाज का 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा या निसफ हिस्सा लिखा जाता है। क्या समझे? आपने फजर की नमाज कितनी पढ़ी? दो फर्ज पढ़े ना, एक फर्ज काउंट हुआ, सब कट गया, और एक के ऊपर चलते जाइए तो 10वां हिस्सा कितना हुआ? 2 में से 0.2% सिर्फ आपकी नमाज कबूल हुई। क्या पता चला? जितनी नमाज सुन्नत के करीब, जितनी नमाज अप टू डेट खुशू खुदू वाली तहारत वाली, उतनी कबूल होगी, पूरी कबूल नहीं होती। और नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्ला, जो इस दौर की सदी के मुजद्दद कहलाते हैं, ये वो शख्सियत है, इनका बहुत नाम सुनेंगे आप इस बुक के दौरान, तो अभी से थोड़ा बता दूं, ये इस दौर की सदी के हैं। आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 से 20 ईयर के अराउंड उस वक्त दुनिया से गए। इनसे अल्लाह ने ये काम लिया कि अहादीस नबवी में जब लोगों ने ज़ईफ़ और मन घड़त रिवायतें में जोड़ दी, इन्होंने एक एक को निकाला, दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया। आज इनकी बहुत खूबसूरत किताबें अहादीस सहीहा और अहादीस दईफा, तो इनका कॉल सुनिएगा। कहते हैं कि हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद नमाज अदा करना इस वक्त मुमकिन है जब हमें तफसील के साथ आपकी नमाज की कैफियत मालूम हो, और हमें नमाज के वाजिबात, आदाब, हयात यानी उसका तरीका, उसकी हयात और दुआएं और उसके अज़कार का इल्म हो, और फिर इसके मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश भी करें, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि फिर हमारी नमाज भी इसी नौयत की होगी जो बेहयाई और मुनकर बातों से रोकती है, और हमारे नामे अमाल में वो अजर व सवाब लिखा जाएगा जिसका वादा किया गया है। तो क्या पता चला कि हमें नमाज के वाजिबात का भी पता होना चाहिए, आदाब यानी मैनर्स का भी पता हो। वाजिबात कहते हैं फर्ज चीज़ें, और बल्कि तहकीक करके उसको सही तरीके से लिया जाए ताकि मेरी आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नमाज करार दे।